شمار پرمہنس پریبرجکاچاریہ سوتر سنسی سمت وائنگریس ابھائی چنار من بھکتی ویدان سامے شیل پروپات کی جائے انت گوٹی پیش سمند کی جائے ناماچاری شیل حداس تھاکو کی جائے پرینس کہو شی کرشن چیت مطبون کیا شی ادویت گدات ہے شیواس آدی گور بھکتی کی جائے شی شی رادھا کرشن گروپ گوپنان شام کون رادھا کون شام کون گری گوپن بھکتی کی جائے گنگا بھائی کی جائے ہری نام سے All glories to the Samadhi Mathis, all glories to Sri Guru and Gaurav. पहले हम रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं. श्री रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी एक राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए. एक आदर्श साधु कौड़िया वैष्णव विद्वान रसिक भक्त तथा श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बने. श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूर्ण समर्पण भाव से विग्रह गोविंद जी की सेवा उनकी सतत प्रेम सेवा ने गोविंद जी के सौष्ठव एवं आनंद में वृद्धि की. रसिक मुरारी ने अपनी अपूर्व अर्चन सेवा से भक्तगण का मन मोह लिया. गोविंद जी की पूजा दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के उपरांत उन्होंने श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया. उन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया. रसिकानंद ने धार्मिक राजसी परिवारों से लेकर मुसलमानों मलेच्छों संशयवादियों नास्तिकों तथा वन्य पशुओं तक सबका उद्धार किया. एक बार कुछ मत ने रसिकानंद पर आक्रमण किया. उन्होंने शांतिपूर्वक उन उपद्रवी पशुओं पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांगा गौरांगा कृष्ण कृष्ण. हाथियों ने अपना अतिक्रम तुरंत रोक दिया. विनम्रता पूर्वक अपने शीश झुकाए और अपनी सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम. देह त्याग करते समय रसिकानंद एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ कर दिया. तदनंतर उन्होंने रेमुणा उड़ीसा में शीरचोर गोपीनाथ अच्छे विग्रह में प्रविष्ट होकर जगत का त्याग कर दिया. उनके वियोग से विध्वस्त होकर उनके शिष्यों ने अपने मृदंग करताल तथा अपने शरीर त्याग दिए. इन सब शुद्ध भक्तों की पुष्प समाधियां मंदिर के समीप अवस्थित है. रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही विद्यमान. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद है, अध्याय 21 और श्लोक संख्या 18. अध्याय का शीर्षक है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना. तो ये श्लोक गोपियों के द्वारा बोला गया है गिरिराज जी की के महिमा के ऊपर. तो ये हम श्लोक उच्चारण करें. हंताया मद्र अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणा स्पर्शा प्रमोदा मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवस कंदर कंद मूलै हंताया मद्री रवल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्शा प्रमोदः मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवस कंदर कंद मूलै हंताय मदरी अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्शा प्रमोदः मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसो यवसकन्दर कन्दमूलये। माता है बोले प्रयास करिए। शब्दार्थ अंत हो अयम हे अद्रिही पर्वत अबलह हे सखियों हरिदास वर्यः भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ। यह क्योंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोदः हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है। सह सात गो गणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयोहो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को। यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सूर्यवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलई तथा खाद्य खंडों से। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। समस्त भक्तों में से ये गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गायों बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह ये पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों को का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य सुने उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से मध्य 1834 उद्धृत किया गया। ये प्रभुपाद जी का अनुवाद है, चैतन्य चरितामृत से लिया है। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानी यह गोवर्धन पर्वत के चरणों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्ध्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह ये घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। वे गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय ददाति सपरां वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, गोवर्धन पूजा का दिन है। अमावास्या के बाद प्रथमा आता है ना, प्रथमा कहते हैं आज के दिन। तो प्रथमा के दिन जो है गोवर्धन पूजा हुई थी और द्वितीया के दिन ब्रजवासी जो है वो सब स्नान करने के लिए गए थे विश्राम घाट में, और तृतीया के दिन जो है इंद्र ने बरसात कर दी और कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था। तो आज केवल हम गोवर्धन पूजा के पर ही चर्चा करेंगे सिर्फ। तो गिरिराज जी का धारण जो है वो और कोई भक्त कर सकते हैं, वर्ष उसको हम सीमित नहीं करना चाहते हैं चर्चा को। तो ये गोवर्धन की पूजा श्रेष्ठ पूजा है और आज भी कई भक्त जो है गिरिराज जी की शिलाएं जो है अपने अपने घरों में रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं। गोवर्धन शिला आप जानते हैं ना, यहां पर भी है गोवर्धन शिला है नहीं? अच्छा अच्छा, हाँ तो है मंदिर में ही है ना। तो गिरिराज जी बड़े संतुष्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से। इसलिए पूरे विश्व भर में इस्कॉन के केंद्रों में गोवर्धन शिला पाए जाते हैं, नहीं तो अन्यथा गिरिराज जी ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते। और हमारे इस्कॉन के जो मंदिर हैं ये ब्रज से कम नहीं है, इसलिए यहां विराजमान है। तो एक बार हम श्रीपाद इंद्र प्रभु के पास गए थे और हम जानते हैं उनके पास बहुत सारी शिलाएं हैं, 2000 शिलाएं हैं। तो इंद्र प्रभु से हमने पूछा कि हमें एक शिला मिल सकती है आपसे। उन्होंने कहा क्यों चाहिए आपको ये शिला? तो हमने कहा कि सेवा के लिए। आप सेवा क्यों करना चाहते हैं? तो फिर मैंने उत्तर दिया कि उनकी प्रसन्नता के लिए। तो उन्होंने इंद्र प्रभु ने उत्तर दिया, वो तो प्रसन्न है ब्रज में रहकर, आपको क्या लगता है आपके साथ बाहर जाके दिल्ली में रहकर वो अधिक प्रसन्न हो जाए? तो गिरिराज जी की जब तक कृपा ना हो गिरिराज जी की सेवा नहीं प्राप्त होती है, कहने करती है। हमने प्रयास भी किया था, हमें वो राधाकुंड के मोहन पांडा ने शिला भी दी थी एक बार, लेकिन ब्रज से बाहर आए नहीं गिरिराज जी। ये साबित होता है जब तक आपके ऊपर कृपा ना हो और आपको अधिकार ना प्राप्त हो जाए तब तक गिरिराज जी की सेवा नहीं मिल सकती। तो आज गिरिराज जी की पूजा का दिन है, गोवर्धन शिला की पूजा हम सब करेंगे। और हरिभक्तिलास में दिया है कि अगर हरिभक्तिलास में दिया है अगर आपके पास गोवर्धन शिला नहीं है या मान लीजिए आप गिरिराज जी नहीं जा सकते हैं आज के दिन, सब तो नहीं जा सकते हैं है ना, भक्तों को यहां भी रहना पड़ेगा, मंदिर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में हरिभक्तिलास में दिया है कि हम लोग गिरिराज जी का बहुत सुंदर रूप बनाए गिरिराज धारण का गोबर से, और गोवर्धन शिला तो अति उत्तम है, नहीं तो शालिग्राम शिला रखकर भी जो है परिक्रमा की जा सकती है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा यहां अगर हम करते हैं ऐसे में चार परिक्रमा करेंगे तो हमें गिरिराज परिक्रमा का भी लाभ मिलेगा। वो इस प्रकार हरिभक्तिलास में दिया है। तो ये जो प्रसंग है गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें, इस अध्याय में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और इस लीला का श्रवण करने से ठाकुर भक्तिनों ने लिखा है चैतन्य शिक्षा व्रत में, इस लीला का श्रवण करने से हम लोग किस चीज से मुक्त होते हैं? देवी देवताओं की उपासना करने से मुक्त होते हैं, है ना? क्योंकि ये भी एक अनर्थ बताया है भक्तिनों ठाकुर ने, ये भी एक अनर्थ है कि अगर हम लोग कई देवी देवताओं की सेवा पूजा कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं, दीक्षा होने के बाद भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये लीला को सुनने से, लीला का श्रवण करने से क्या होगा, हम कृष्ण के चरणों में एकांतिक भक्ति कर पाए। तो यहां श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने इस अध्याय के एक तात्पर्य में, बल्कि इस अध्याय के जो अंतिम श्लोक के तात्पर्य में छह जो उन्होंने बातें बताई हैं, छह सिद्धांत बताए हैं जो इस अध्याय में प्राप्त होते हैं। अभी हम यहां पर ये चर्चा नहीं करने वाले हैं, ये बताने नहीं वाले कि कृष्ण ने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए, तो काफी लंबा हो जाएगा वो, फिर तर्क तो बहुत सारे प्रस्तुत किए, लेकिन इसको जिस्ट में, एक सार में विश्वनाथ जी ठाकुर ने अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में दिया है, तो वो आप सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा है। और ये विश्वनाथ जी ठाकुर ने श्रील श्रीधर स्वामी को उदित किया है, कोट किया है। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधिका रमन की जय, गौरताई की जय। तो पहला उन्होंने बताया है, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, केवल कर्म ही किसी के भाग्य का निश्चय कर सकता है, कर्म ही जो है भाग्य का निश्चय कर सकता है। नंद महाराज को कृष्ण बता रहे हैं, नंद महाराज तैयारी कर रहे हैं इंद्र की पूजा की, और समस्त प्रकार की सामग्री एकत्रित कर दी है, और इस समय नंद गांव में रह रहे हैं। नंद महाराज जो है नंद गांव में, पहले जो 3.5 वर्ष है, 3 महीने 7 दिन कृष्ण ने गोकुल में बिताए थे, उसके बाद छठीकरा में भी उतना ही बिताया, 3 साल 7 महीने, और उसके बाद नंद गांव में भी 3 साल 7 महीने, तो इस तरह से लगभग 11 साल उन्होंने इस इलाके में बिताया, वृंदावन में, तो उसके बाद फिर वो मथुरा गए। तो नंद गांव में रह रहे हैं, और 7 साल की उम्र में लगभग कृष्ण जो है गिरिराज जी को धारण किया था। तो यहां पर कई बातें बताई जा रही हैं, कृष्ण जो तर्क प्रस्तुत किए उसमें से उन्होंने ये भी बताया कि केवल कर्म ही किसी के भाग्य का निश्चय कर सकता है, कि हम लोग इसको कर्ममांसा सिद्धांत कहते, कर्मवाद विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं, प्रभुपाद ने भी बताया है, ये कर्म मीमांसा, कर्म ही पूजा है ना। कुछ भी करो आप, सिगरेट पियो, शराब पियो, नियम तोड़ो, है ना, तो उसको क्या है, वो पूजा है, वो कर्म ही पूजा है। सकाम कर्म को कह सकते हैं एक दृष्टि से पूजा है, लेकिन वो भी कोई अंतिम पूजा नहीं है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो कर्म ही पूजा है अपने आप में, तो ये केवल एक भौतिक सिद्धांत है जिसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, परमात्मा का कोई रोल नहीं है, देवी देवताओं का कोई रोल नहीं है, स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है, सब कुछ स्वयं ही है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कर्म के 5 कारण बताए हैं। पहला क्या बताया है, अधिष्ठान हम बताया है ना, प्लेस ऑफ एक्शन, इस तरह से ये प्लेस ऑफ एक्शन है भक्ति के लिए भी, ये भक्ति के 5 कारण भी बनते हैं जो वैदिक भक्ति साधना में लगे हैं उनके लिए, ये भी जो है 5 कारण है। कोई अगर भक्ति करना भी चाहता है, मतलब किस अवस्था में, बद्ध अवस्था में, कोई अगर मतलब मुक्त अवस्था में, तो उसके लिए तो फिर कोई कारण नहीं है, वो स्वयं ही पूर्ण रूप से निर्भर है कृष्ण के ऊपर। जैसे श्रील गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज पब्लिक लैट्रिन में जब करते थे, तो उनके लिए ये अधिष्ठान हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए मतलब है, टेंपल हॉल, नीचे कालीन बिछा हो, राधिका रमन जी का दर्शन हो रहा हो, तुलसी महारानी के समक्ष, तो ये सब बातें बड़ी मायने रखती है हमारे लिए। प्लेस ऑफ एक्शन मंदिर हो, उत्तम स्थान है, श्रीधाम वृंदावन में जब करें, यमुना जी के निकट गिरिराज जी का दर्शन करते हुए हरि नाम लें, तो ये बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। उसके बाद क्या बताया है भगवान ने, इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का उपयोग करते हैं कि नहीं, हम करते हैं भक्ति में, करते हैं नहीं करते, सोच रहे हैं कुछ भक्त लोग, करते हैं नहीं करते, भगवान हम तो करते हैं, मैं तो करता हूं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, कान से सुन रहे हैं ना हम लोग, है ना, हाथ से मंदिर मार्जन करते हैं, पांव से भगवान के मंदिर में चल के जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से, और इन इंद्रियों के द्वारा सेवा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, चेष्टा की आवश्यकता, एंडेवर की आवश्यकता है। जैसे कई आप में से भक्त हैं जो बाहर से आए, आज यहां भागवतम क्लास में बैठे हैं, मौसम कैसा भी हो आप लोग आए हैं, मंगल आरती में पूरा टेम्पल हॉल भरा हुआ था, बाहर भी भक्त खड़े हुए थे, तो ये सब क्या है, चेष्टा के कारण हो रहा है। बिना चेष्टा के कोई यहां पर आ नहीं सकता है। और कर्ता, कर्ता का मतलब स्वयं, द डूअर, यानी कि खुद हम, यानी कि मैं स्वयं कर्ता। और पांचवा क्या बताया है भगवान ने, परमात्मा। परमात्मा की अगर अनुमति ना हो तो आप जो है क्या नहीं कर सकते, कोई कर्म नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक कॉलेज में, एक स्कूल में या कोई सेमिनार देने जा रहे हैं, सारी व्यवस्था कर लिया आपने, सेमिनार हॉल भी देख लिया और आपने चेष्टा भी कर लिया, पहुंच भी गए और हर प्रकार से आप जो है हाथ से पांव से अपनी इंद्रियों से लगे हुए हैं उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, स्वयं पहुंचे हुए हैं कर्ता। लेकिन वहां पर आपको सैंक्शन नहीं मिला, अनुमति नहीं मिली प्रोग्राम करने के लिए, तो कर पाएंगे आप सेमिनार, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परमात्मा की अनुमति है, भगवत कृपा की आवश्यकता है। इसलिए बिना भगवत कृपा के हम लोग, बिना भक्त की कृपा के या भगवत कृपा के हम लोग भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, भले ये सारी व्यवस्था क्यों ना हो, है ना। तो इस प्रकार यहां बताया कर्म के पांच, जो कर्म ही मतलब लोग मान लेते हैं सामान्यतया, लोग जो कर्मी लोग हैं वो क्या मानते हैं, केवल कर्म ही किसी के भाग्य का निश्चय कर सकते। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। इसमें इंद्र का क्या रोल है, इसमें इंद्र का क्या योगदान है, सो बताइए। अब अच्छा कर्म करो आपको अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा कर्म करो बुरा फल मिल जाएगा, तो इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है आपको, बाबा बताइए। तो कृष्ण जो है, देखिए कृष्ण में ममत्व की भावना है। भगवान ने ऐसा ही नहीं कह दिया भगवत गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ममत्व की भावना मतलब एक्सट्रीमली पॉसेसिव है भगवान भक्तों के लिए, और प्रेमी भक्त भी इसी तरह से भगवान के जो प्रेमी। हमारे तो अंदर तो ये पोसेशन की भावना है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी भावना है पोसेशन की, है ना। अपने परिवार के लिए पॉसेसिव है, समाज के लिए पॉसेसिव है, अपने ध्येय के लिए पॉसेसिव है, धन के लिए पॉसेसिव है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए पॉसेसिव है। तो अभी तक वो लेवल पहुंचे नहीं हम लोग कि पूर्ण रूप से जो हम लोग कह सके कि मैं कृष्ण का हूं या कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं या मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ये कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, चंद्रावली कहते हैं। लेकिन राधा रानी क्या कहती है कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण केवल मेरे ही है। ऐसी भावना अगर, ऐसा अगर विचार भी अगर शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं, कृष्ण केवल मेरे हैं, बोलिए, बड़ा अच्छा लगेगा ये बोलने में। ऐसा बोलिए रोज रोज अभ्यास करिए इसका, कृष्ण केवल मेरे हैं। इसलिए उनका मैं सदुपयोग करूंगा दुरुपयोग नहीं। इसका भाव ये है कि कृष्ण अगर केवल मेरे हैं तो उनका मैं सदुपयोग करूंगा, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कई प्रकार के सिद्धांत छुपे हुए हैं, कई फिलॉसफी छुपी हुई है इसमें। तो इस प्रकार गोवर्धन की पूजा करवाना चाह रहे हैं कृष्ण। गोवर्धन जो गाय का वर्धन करने वाले हैं, गोवर्धन इंद्रियों का वर्धन करने वाले हैं, और यहां तक कि कृष्ण बलराम स्वयं गिरिराज जी के ऊपर जाते हैं गोचारण लीला के लिए। कई कुंज हैं, कई कंदराएं हैं, बहुत सारे कुंड है उसमें गिरिराज जी में। आज भी देखिए बरसात के मौसम के बाद, अभी भी जाइए आप परिक्रमा मार्ग में, बहुत हरियाली है गिरिराज जी के ऊपर, दान घाटी के पास आप देखिए गिरिराज जी में बहुत हरियाली है। तो एक समय था कि गिरिराज जी तो पूरे ही हरे भरे थे, अब तो कई जगह पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि गिरिराज जी नजर नहीं आ रहे कई जगह पर। अब सबसे ऊंचाई जो है 90 फुट रह गई है केवल गिरिराज जी की, मैक्सिमम हाइट जतिपुरा के एरिया में। आगे बता रहे हैं, मनुष्य का बद्ध स्वभाव उसका परम नियंता है। बद्ध स्वभाव मतलब कंडीशन नेचर जो है, अब अपने स्वभाव के अनुसार प्रत्येक जीव कार्य करता है। अब रजोगुण में तो रजोगुण में कार्य करेंगे, सत्वगुण में सत्वगुण में कार्य करेंगे, तमोगुण में तो तमोगुण में कार्य करेंगे। इसमें इंद्र का क्या रोल है, अब अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हो, प्रकृति के गुणों के आधार पर अब अपना कर्म कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसमें इंद्र का क्या योगदान है, इंद्र की पूजा क्यों की जाए, है ना। इनडायरेक्टली जाते कृष्ण चाहते हैं कि उनकी पूजा हो, सीधी सी बात है ना। तो ये कृष्ण में बड़े ही शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में पाया जाता है। कि मेरी पूजा हो। लेकिन हम, क्योंकि हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं संसार में, हम भी मन में ये विचार ले आते हैं कई बार कि मेरी पूजा हो, मुझे लाभ प्रतिष्ठा मिले, है ना। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक जीव वास्तव में कृष्ण बनने के लिए ही आया है। बद्ध अवस्था में हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं। जॉर्ज हैरिसन यही कह रहे हैं कृष्णा बुक की शुरुआत में कि आप जो है, हर व्यक्ति जो है कृष्ण की तलाश में। ये फैक्ट है, कृष्ण की तलाश क्या है, स्वयं ही कृष्ण बनना चाहते हैं, हम स्वयं ही कृष्ण बनना चाहते हैं। इसलिए सब जो कृष्ण में है मूल रूप से, वो सब हम लोग चाहते हैं संसार में। तो बद्ध अवस्था में व्यक्ति जो है, जीव जो है, स्वाभाविक रूप से अपने गुणों के अनुसार कार्य करेगा। इसमें इंद्र का योगदान है, इंद्र कहां से बीच में आ गया। और तीसरा बता रहे हैं प्रकृति के गुण परम नियंता है। तो वही बात है कि प्रकृति के गुण जो है परम नियंता है, और गुणों के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। भगवान कर्म के आश्रित पक्ष के रूप में है, तो भगवान भी जो है कर्म के आश्रित है। यानी कि अगर मान लीजिए भगवान देते भी हैं, मान लिया जाए, तो वो हमारे कर्म के आधार पर दे रहे हैं। हमारा अच्छा कर्म है तो भगवान अच्छा फल देते हैं, अगर बुरा कर्म है तो भगवान बुरा फल देते हैं। तो इसमें इंद्र कहां से बीच में आ गए या भगवान कहां से बीच में आ गए। कंट्रोल तो हमारा है, हम अच्छा कर्म करेंगे हम अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिल जाएगा। इसमें कहां से कृष्ण आ गए। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। ये प्रारब्ध नष्ट हो सकते हैं, कर्म नष्ट हो सकता है केवल भक्ति के द्वारा। तो भगवान का तो बहुत बड़ा योगदान है, भगवान आपको इसकी अनुमति दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अच्छा कर्म ही कर सकते हैं या बुरा कर्म ही कर सकते हैं, इसकी अनुमति भी तो भगवान ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आगे बताया है वह कर्म नियंत्रण के अधीन है। तो इस प्रकार कर्म नियंत्रण के अधीन बता रहे हैं, भगवान भी कर्म नियंत्रण के अधीन है। और इस प्रकार हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म मिलेंगे बुरा फल मिलेगा। इसके द्वारा तो ये पता चलता है कि भगवान भी हमारे कर्मों के अधीन है। और क्या बता रहे हैं, मनुष्य के प्रति वास्तविक आराध्य देव है। मनुष्य की वृत्ति का मतलब है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो जीव करता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, ब्राह्मण का जो कार्य हो करता है, या वैश्य का कार्य करता है, शूद्र का कार्य करता है। और हम लोग तो वैश्य हैं, है ना। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवान गीता बता रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारा बिजनेस है, गायों का पालन हम लोग करते हैं, ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपना जो हमारा नेचर है, हमारा जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, हमारा जो वृत्ति हमारी, उसके हिसाब से हम लोग अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं और उसका हमें फल मिल रहा है। इसमें इंद्र कहां से बीच में आ गए। और तो और अगर बरसात भी कर रहे हैं, बरसात तो कहीं जगह पे कर रहे हैं, बरसात कहां नहीं कर रहे हैं, समुद्र में कर रहे हैं, पहाड़ों में कर रहे हैं, वहां कौन यज्ञ कर रहा है। ऐसे स्थानों में बरसात हो रहा है जहां कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो कि यज्ञ करने से बरसात होगा, अरे विदेशों में तो कोई यज्ञ करता ही नहीं, वहां कैसे बरसात हो रही है। फिर सही बात है कि नहीं, सही बात है नहीं। तो बरसात होने का मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि बरसात वो होता है जो रात्रि के समय हो और सुबह सूर्य उदय हो जाए, ताकि फसल जो है उपजाऊ बन जाए। इसको कहते हैं यज्ञ वाला बरसात। ये नहीं कि कभी भी बरसात हो रही है तो यज्ञ से हुआ जी बरसात, बाढ़ आ गई वो भी यज्ञ से हुआ है, है नहीं। सुबह सुबह 6 बजे बारिश शुरू हो गई, दोपहर में 2 बजे बारिश शुरू हो गई, ये सब यज्ञ के वजह से हो रहा है, ये सब पाप कार्य की वजह से हो रहा है। नॉन सीजनल रेन इसको कहते हैं, और गलत समय पर बरसात होना। तो भगवान जो गीता में बता रहे हैं, अन्नाद भवंती भूतानि परजन्यात अन्न संभवा यज्ञात भवती परजन्यो, है ना। तो ये सब जो है बरसात जो हो रही है, ये यज्ञ के द्वारा जो बरसात होती है वो सही समय पर और सही मात्रा में होती है, उसको कहते हैं यज्ञ के द्वारा बरसात होना। अन्यथा क्या होगा, सूखा होगा, बाढ़ आएगी, समानी आएगा। अभी अमेरिका में बहुत बड़ा तूफान आया था, जानते ना, पिछले हफ्ते हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, बड़ा भयानक तूफान आया। तो ये सब जो है पाप कर्मों का फल मिल रहा है, पाप कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कह देना कि बरसात हो रही है, बरसात, लेकिन यहां पर नास्तिक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण स्वयं। कृष्ण स्वयं ही नास्तिक दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों, के उद्देश्य क्या है उनका, इंद्र की पूजा को बंद कराना। वो नहीं चाहते कि इंद्र की पूजा हो, क्योंकि भगवान ने देख लिया कि इंद्र को इतना अहंकार आ गया है और उसके अंदर जो है अभिमान आ गया है कि वो स्वर्गलोक का राजा है और उसको लग रहा है कि मेरी पूजा होने वाली है, अब उसकी पूजा बंद होने वाली है तो अभी जो है वो क्या करने वाला है, बरसात करने वाला है। तो ये कृष्ण पहले से जान गए और कृष्ण जो है इंद्र को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे, वो जो भी करेंगे इनडायरेक्टली करेंगे और इंद्र उसी में सुधर जाएंगे। ये जो है कृष्ण की महानता है, क्योंकि देखिए उनका भी मैनेजमेंट है बहुत बड़ा, यूनिवर्सल मैनेजमेंट है। 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता तो सभी को मिला के है, उनकी प्रजा को मिला के। वैसे तो प्रमुख 33 देवता ही हैं और उनके जो लोक में जो और भी जो रहते हैं देवता वो भी देवता ही है ना। जैसे भारत में जो भी रहता है वो सब भारतवासी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है, राष्ट्रपति एक ही है। इसी तरह से स्वर्गलोक में अनेकों देवी देवता हैं, लेकिन इंद्र उसमें से एक है, स्वर्गलोक के राजा हैं। तो इस प्रकार जो है इंद्र देख रहे हैं वो स्वर्गलोक में हो क्या रहा है, उनको रिपोर्ट मिल रहा है, सूचना मिल रही है कि आपकी पूजा बंद हो रही है, देख लीजिए आप। तो इंद्र को लगा ये कैसे हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे जो गुरु हैं, हमारे अथॉरिटीज हैं, हमें पावर पोजीशन देते हैं, नहीं बन जाओ डायरेक्टर, यू आर दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप फूड फॉर लाइफ के डायरेक्टर हैं, आप मेंबरशिप के डायरेक्टर हैं। तो फिर हम डायरेक्टर जो टाइटल मिल जाता है उसके बाद हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है तो फिर कर्ता होने की भावना आ जाती है हमारे अंदर। तो ये सकाम जो कर्म मिश्रित भक्ति जिसको कहते हैं, ये यहां पर भी पाई जाती है, हमारे भीतर भी। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, है ना। तो ये जो नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने बताया कि भगवान अगर एक चीज नहीं पसंद करते हैं भक्तों में तो वो उनका अहंकार, इस कारण से जो है उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते, केवल अहंकार के कारण। तो ये जो विनम्रता है ये बहुत बड़ा आभूषण है भक्ति का। तृणाद अपि सुने चेन तरोर अपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहारी, इतना आसान नहीं है। कह देंगे कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे बारे में थोड़ा सा भी कोई एक शब्द बोल दे या सुन ले हम तो पता नहीं हम होलसेल में उसको रिटर्न कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग सहन नहीं कर पाते, सहन शक्ति बहुत कम है हमारे अंदर। आपका तो पता नहीं, मुझे अपने बारे में तो मैं बोल ही सकता हूं, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो सहन करने की भावना है जब तक जागृत नहीं होगी भक्तों में तो बड़ा मुश्किल है। और ये जो हमारे लिए मापदंड है कि हमारे भीतर कितनी विनम्रता है, कितना हम सहन कर पाते। 90% सहन कर रहे हैं तो 90% ह्यूमिलिटी है, 100% सहन करते हैं तो 100% ह्यूमिलिटी है, 1% अगर सहन कर रहे हैं तो 1% ह्यूमिलिटी है, 100% अगर सहन कर रहे हैं तो 100% प्योरिटी है। सीधी सी बात। तो ये जो सहन करना जो है बहुत बड़ी योग्यता है जो केवल जो है निष्ठावान भक्तों में पाई जाती है। तो इंद्र में अभी वो निष्ठा नहीं है, सीधी सी बात है, कर्म मिश्रित है। देवी देवतागण अधिकांश होते हैं वो कर्म मिश्रित होते हैं भक्त। तो स्वर्गलोक में रहना जो है वो भी एक अनर्थ है, ऐश्वर्य में रहना बहुत बड़ा अनर्थ है, पद में रहना जो है आसान नहीं है भक्ति करना। कोई मान लो सामान्य भक्त हो जिसको पद ना प्राप्त हुआ हो, उसके लिए भक्ति करना जो है सरल होता है फिर भी, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से जो है उसको सेवाएं जो है दी जाती हैं उसकी पात्रता के अनुसार, और वो किसी ना किसी के आश्रित होता है तो कहने वाला भी होता है कि आप गलत हो या सही हो। लेकिन जैसे जैसे आपका पद ऊंचा बढ़ता है भक्ति मार्ग में, विशेष रूप से हमारे संस्था में भी कई प्रकार के पद हमें दिए जाते हैं, तो उसमें फिर खतरा बढ़ता जाता है। ब्रह्मा जी का देखिए, ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे हैं 14वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14 चैप्टर में, कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए मुझे अहंकार ना हो जाए कहीं, ये तो पूरा ब्रह्मांड घड़े के समान है, उस घड़े के अंदर भीतर बंद हूं मैं, लेकिन मैं मेरे भीतर ये सृष्टिकर्ता की भावना ना आ जाए कि मैंने ही सृष्टि की है, वास्तव में तो सृष्टि आपने की है। इस प्रकार ब्रह्मा जी, आप देखिए इस प्रकार की प्रार्थना है ब्रह्मा जी, दो या तीन दफा भागवत में भी इसका निरूपण हुआ है। ब्रह्मा जी बार बार इसी तरह की प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने ही सृष्टि की। ये बहुत ही खतरनाक चीज, और उसमें सफलता प्राप्त हो जाए आपको, पदवी है आपके पास तो सफलता भी मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, एक्सेलेंट डीटी वर्शिप, एक्सेलेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट क्लास एवरीथिंग, है ना, बहुत सारे भक्ति बन रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज प्रोग्राम्स, यूथ प्रोग्राम्स, कंग्रीगेशन प्रीचिंग बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो गया, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, सफलता है ना, बहुत सारी सफलताएं मिल रही हैं, या फिर भौतिक जगत में भी रहकर किसी का बिजनेस एक्सपैंड हो गया है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर ली है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, कई बार कृष्ण को भूल जाते हैं और स्वयं ही अपने को केंद्र बिंदु बना लेते हैं। इंद्र की भी यही समस्या है, सेम प्रॉब्लम है ना, इंद्र पीड़ित है लाभ पूजा प्रतिष्ठा से, ये उनका रोग है इस प्रसंग के अनुसार। वैसे तो इंद्र की व्या जो इंद्र के जो असुर हैं उनका जो है उद्धार करने के लिए भगवान गीता, भगवान प्रकट होते हैं नाना प्रकार के अवतारों में, एते श्याम शाह कला पुम श्याम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृयंती योगी हो गए। लेकिन इंद्रारी एक और, इंद्रारी एक और है, जानते कौन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये बड़ा भयानक असुर है, कृष्ण ही केवल इसका वध कर सकते हैं, तो ये कृष्ण के द्वारा ही संभव है इस राक्षस को वध करना। लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो है इंद्र को सता रहा है। एक ब्रजवासी ने बड़ा अच्छा बताया, हम वंशी वट में गए थे और वो महाराष्ट्र का वर्णन कर रहे थे, तो अंत में उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि कृष्ण ने वास्तव में इंद्र को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बरसात की, क्योंकि इसके माध्यम से कृष्ण को, गिरिराज जी को धारण करने का मौका मिला और समस्त ब्रजवासियों के साथ लगातार एक हफ्ते उनके साथ रसास्वादन करने का मौका मिला। लेकिन ब्रह्मा जी से इतने प्रसन्न नहीं थे कि ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वालों को लेकर चले गए, ब्रजवासियों को उनसे अलग कर दिया, इसलिए कृष्ण उतने प्रसन्न नहीं थे। इसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते रहे, कृष्ण देखा भी नहीं उनको। तो इस प्रकार कई प्रकार के कारण होते हैं और इंद्र को भगवान ने निमित्त बनाया। देखिए क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं, एक तीर से दो निशाने लगाते है कि नहीं, एक तरफ तो इंद्र का मान भंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, मूल उद्देश्य, प्राइमरी रीजन क्या था, गिरिराज जी को धारण करना, ब्रजवासियों के साथ आनंद लेना जो कभी नहीं हुआ इससे पहले, ना कभी होगा। और सेकेंडरी रीजन क्या था, इंद्र का मान भंग करना। प्राइमरी रीजन उनका था गिरिराज जी को धारण करना। तो एक ही लीला के माध्यम से कई जो है उद्देश्य पूरा करते हैं भगवान। जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब ने जो है वृंदावन में मंदिरों को तोड़ा, मदन मोहन जी, गोविंद, गोपीनाथ, इन मंदिरों को तोड़ दिया। अब उसके जो तोड़ने की इच्छा है उसको पूरा किया कृष्ण ने, लेकिन मूल कारण क्या था कि कृष्ण जो है जयपुर जाना चाहते थे, राजस्थान, ये उनका मूल उद्देश्य है। तो इसलिए मूल उद्देश्य को पूरा करते हुए कई गौण जो उद्देश्य है वो भी पूरे हो जाते हैं कृष्ण के। तो इसलिए हम लोगों को भी शुद्ध करते हैं, इसी तरह से भगवान जो है हमें भी पवित्र करते हैं, कृष्ण हमें भी पवित्र करते हैं, हमारे माध्यम से प्रचार भी कराते हैं, हमारे माध्यम से हमें शुद्ध भी करते हैं हमारे माध्यम से जो है हमें शुद्ध भी करते हैं और हमारे माध्यम से प्रचार भी करवाते हैं। तो ये बड़ा भयानक है, इसलिए जो है ये नम्रता लाना जो है बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। जब भक्त जो है प्रारंभ में संस्था में जुड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय भक्त बड़े विनम्र होते हैं स्वाभाविक रूप से। ये भौतिक जगत में भी देखा गया, कोई अगर जॉब में लगता है पहली बार तो वो हर क्षण यस सर बोलता रहता है ना। जैसे वो पुराना हो जाता है, 5 साल 10 साल हो जाता है, फिर वो नाम से बुलाना शुरू कर देता है, फिर अपने बॉस के कैबिन में सीधा चला जाता है बेधड़क होकर। तो इसी तरह से जब प्रारंभ में आते हैं, वही मेटेरियल कॉन्शियसनेस लेके जब आते हैं तो लगता है अरे सीनियर भक्त हैं, ये पुराने भक्त हैं, ये अथॉरिटी है, ये गुरु है, ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, दंडवत करते रहते हैं। अब हम तो दंडवत स्वीकार करते करते लगता है कब कितना बचा पाएंगे, हर 10 कदम में कोई ना कोई नजर आता है दंडवत करता हुआ, अब कितना रिटर्न करें। अब यही करते रहेंगे तो पूरे दिन दंडवत ही करते रहना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए होगा नहीं। अच्छा, यही नए भक्त जब पुराने लग जाते हैं उनको लगता है कि अब तो सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, अब दंडवत थोड़ा सा कम कर ले, अब मैं जो है संख्या पूर्वक दंडवत करूं, कोई आवश्यकता नहीं है इतने सारे दंडवत करने, क्या आवश्यकता है। गोस्वामी ने भी तो संख्या पूर्वक किया। इस प्रकार से फिलोसफिकली हम अपने आप को कन्विंस करेंगे कि इतने दंडवत करने की आवश्यकता नहीं। और फिर दंडवत प्रभु जी, फिर तो हरे कृष्णा के बदले आजकल ये नया फैशन में निकल गया है कि हरे कृष्णा प्रभु जी नहीं बोलते हैं भक्त लोग, कई बार वो दंडवत प्रभु जी बोलते हैं हाथ जोड़ के, तो उसमें उनको लगता है कि सब कुछ इंक्लूड हो गया, हरे कृष्णा भी इंक्लूड हो गया, सब फोन उठा रहे दंडवत प्रभु जी, अरे हरे कृष्णा का क्या हुआ, बोली नया स्लोगन शुरू हो गया। तो इस प्रकार जो है इंद्र यहां पर और बड़ा आनंद अच्छा लिखा है यहां पर कि किस तरह से कृष्ण जो है, स्वयं कृष्ण जो है इस पूजा के मार्गदर्शक बन गए, डायरेक्टर बन गए, और स्वयं नंद महाराज को डायरेक्शन दिया कि आप इस तरह से पूजा करिए, गोवर्धन की पूजा करिए। मैं आपको बताता हूं क्योंकि तर प्रस्तुत किए तो ये लोग जो है नंद महाराज और उनके जो भाई थे और जितने ब्रजवासी थे उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहोगे वैसे कर ले। अब एक इसमें विचार करने की बात है कि क्या नंद महाराज जो है, क्या नंद महाराज जो है इसलिए स्वीकार कर लिया और इसलिए मान लिया कि वो कृष्ण के फिलोसफिकल पॉइंट से कन्विंस हो गए इस कारण से, नहीं, नंद महाराज इसलिए कन्विंस हुए क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण से आसक्ति के कारण। उन्होंने कहा कृष्ण इतना कह रहा है, बार बार मुझे एक ही बात बोल रहा है और मना कर रहा है, ठीक है इसको खुश करने के लिए मैं ये पूजा बंद कर सकता, ये मेन कारण है। तो इस प्रकार जो है कृष्ण स्वयं मार्गदर्शन दिया और क्या क्या बताया, आप सुनिए ध्यान से सुनिए। खीर से लेकर तरकारी के शोरबा तक के विविध पकवान तैयार किए जाएं, अनेक प्रकार के बढ़िया पापड़ तल लिए जाएं या सेक लिए जाएं तथा दूध के जितने भी पदार्थ मिल सके उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिया जाए। खीर सबसे पहले बनाया जाए, उसका कारण क्या है बताइए, क्योंकि खीर पहले बनाएंगे तो गर्म होगा, जो व्यंजन सब तक जब तक बन जाएंगे तब तक खीर ठंडा हो जाएगा, खीर ठंडा भोग लगाया जाए, ये ही निर्देश है कि खीर जो है ठंडा लगाया जाए, भोग गर्म नहीं, खोलता हुआ नहीं। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आह्वान करें, तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गऊ तथा अन्य भेंट दान में दो। गोवर्धन पूजा से पहले एक दो कुत्तों तथा चंडालों जैसे पतित आत्माओं समेत हरेक को उपयोग भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गवों को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंट चढ़ाओ। भरपेट भोजन करने के बाद तुम में से हरेक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए, अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौवों ब्राह्मण यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो कृष्ण स्वयं आगे दी है कि गिरिराज जी की परिक्रमा की जाए। हे पिता, उचित मान लिया। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया और शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंट दी। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया नंद महाराज ने कि अब इतने सारी सामग्री हमने एकत्रित की है, इतना कुछ बना लिया है, तो इसका क्या करें, सब फेंक दें हम, ये तो बेकार हो जाएगा। तो कृष्ण का कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी सामग्री को गोवर्धन की सेवा में लगा दीजिए। देखिए कितना ईगो क्रश कर रहे हैं इंद्र का, कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं कि ये नहीं कि जो है सामग्री जो है आप गोवर्धन की सेवा में लगा दो। तो ये इंद्र सब कुछ सुन रहे हैं, 100 लोग बैठे हुए, अच्छा ये भी कर रहा है। तो यहां आगे बता रहे हैं, उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रह सारी सामग्री को भेंट दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौओं, सांडों तथा बछड़ों को आगे घर के गोवर्धन की पर्वत की प्रदक्षिणा की। बैलों द्वारा खींचे जा रहे छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियों भी साथ हो ली और कृष्ण की महिमा का गान करने लगी और उनके गीत ब्राह्मणों के आशीष में जा मिले। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और ये घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ प्रचुर भेंट खाली। कृष्ण ने ब्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप का नमन किया और इस तरह वास्तव में अपने को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो ये पर्वत किस तरह पुष्प रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम पर कृपा की है। ये गोवर्धन पर्वत इच्छा अनुसार रूप धारण करके अपनी उपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा, अतः अपनी तथा गोवों की सुरक्षा के लिए हम उसको नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोप जन गोवों तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट आए। तो इस प्रकार ये गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। आज गिरिराज जी की पूजा होगी, आप जाएंगे गोवर्धन में, तो वहां गोवर्धन दान घाटी में करीब 11,000 लीटर दूध जो है उपवाते वो हर साल भेजते हैं। 11,000 लीटर दूध भेजते हैं, गिरिराज जी का अभिषेक होता है उससे। तो ये जो मुखारबिंद है, कई मुखारबिंद है आप जानते हैं परिक्रमा मार्ग में, एक तो जतिपुरा में वहां मुखारबिंद है, एक मुखारबिंद बोलते हैं दान घाटी में है, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने मानसी गंगा में जो मुखारबिंद है उसको मुखारबिंद बताया। हम लोग गौड़िया वैष्णव जो है उसको मुखारबिंद मानते हैं, इसलिए कई भक्त जो है वो मानसी गंगा से प्रारंभ करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा और मुखारबिंद से शुरू करके मुखारबिंद में ही समाप्त करते हैं। गिरिराज जी की जो आंखें हैं वो नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड, उनके नेत्र बताए जाते हैं। गिरिराज जी का जो आविर्भाव है इस पृथ्वी में, इसके दो कथाएं हैं, ये बताकर हम विराम देंगे। पहली कथा है सत्यु की कथा, जिससे पुलस्त मुनि जो है गिरिराज जी के जो पिता है द्रोणाचल, नंद द्रोणाचल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं काशी से आया हूं और मुझे एक पहाड़ की आवश्यकता है ताकि मैं बड़ी शांति से तपस्या कर सकूं, अपना भजन कर सकूं, क्योंकि वहां बहुत डिस्टर्बेंस है काशी में। तो जो गिरिराज जी साथ में ही खड़े थे, गोवर्धन ने सोचा कि अगर मैं मना कर दूंगा, अगर ये मना कर देंगे पुलस्त मुनि को तो पुलस्त मुनि हो सकता है शाप भी दे दें। तो फिर इससे पहले कि वो मना करते, गिरिराज ने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो फिर मैं आगे नहीं चलूंगा, कहीं रखेगा नहीं मुझे। तो ब्रज में जब ब्रज में पहुंचे यमुना जी के निकट, गिरिराज ने देखा ये तो स्थान आ गया मेरा जिसके लिए मैं आया हूं गोलोक धाम से। तो फिर गिरिराज जी जो है उसी समय बहुत भारी हो गए और भारी हो गए तो उनसे उठाया नहीं गया पुलस्त मुनि से, उन्होंने रख दिया नीचे और उसके बाद फिर अपना स्नान इत्यादि करने के लिए, भजन करना वगैरह करने के लिए वो चले गए और उसके बाद संध्या वगैरह करके वो जो वापस आए और गिरिराज जी को उठाने का प्रयास किया तो गिरिराज जी हिले नहीं और फिर गिरिराज जी को उन्होंने शाप दिया कि आप एक तिल के बराबर जो है रोज आपका आकार जो है कम हो जाएगा। इसलिए बता दें कि 10,000 साल के बाद गिरिराज जी भी अप्रकट हो जाए। अब इससे प्रश्न उठता है कि कृष्ण जो है क्षमा करिए गिरिराज जी जो है वो शाप के कारण जो है उनका आकार कम हो रहा है या फिर कृष्ण से विरह के कारण हो रहा है ना। तो इसमें भी देखिए मुख्य और गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है? कृष्ण से विरह हो रहा है। और गौण कारण क्या है? पुलस्त मुनि ने शाप दिया। दूसरी कथा आती है आदि बरा पुराण में, त्रेता युग का समय है और हनुमान जी निकले हैं पर्वत लाने के लिए, क्योंकि कई जो वानर हैं और वो सब गए हुए थे अलग अलग दिशाओं में बड़े बड़े पत्थर चट्टान लाने के लिए। तो हनुमान जी भी निकले थे तो उत्तराचल से गिरिराज जी गोवर्धन को उखाड़ के लाए थे हनुमान जी और लेकर निकले। तो ब्रज में जब पहुंचे तो आकाशवाणी सुनाई दी हनुमान जी ने। क्या आकाशवाणी सुनी? कि सेतु बन चुका है, अब और शिलाएं लाने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार हनुमान जी ने क्या किया? गिरिराज जी को वहीं पर रख दिया। गिरिराज जी को बड़ा क्रोध आया। गिरिराज ने कहा कि आपने मुझे यहां क्यों रखा? मुझे भगवान राम की सेवा से वंचित कर दिया, मैं आपको शाप देता हूं। तो ने कहा आप मुझे शाप मत दीजिए, मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि अभी भी सूचना मिली है कि सेतु बन चुका है और स्वयं भगवान श्री राम जो है कृष्ण के रूप में जब आएंगे द्वापर युग में तो आपको धारण करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उनका व्यक्तिगत सानिध्य आपको प्राप्त होगा। तो इससे गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी वापस पहुंचे, और हनुमान जी पहुंचे तो भगवान श्री राम को बताया तो भगवान ने कहा कि हाँ द्वापर युग में मैं फिर से प्रकट होऊंगा और इनको उनके गिरिराज जी की कंदराओं में उनके कुंजों में जो है मैं लीलाएं करूंगा, यहां तक कि गोवर्धन की तलहटी में मैं रास नृत्य भी करूंगा। तो इस प्रकार गिरिराज जी को मैं स्वयं अपने हाथों से धारण करूंगा। तो इस प्रकार गिरिराज जी के ऊपर विशेष कृपा हुई। गिरिराज जी को कुछ भक्त जो है राधा कृष्ण के रूप में सेवाओं की करते हैं और कुछ भक्त जो है उनको एक वैष्णव के रूप में देखते हैं, ये अचिंत भेद अभेद तत्व सिद्धांत है ना। तो इस प्रकार जो है गिरिराज जी ने आज बड़ी विशेष कृपा की। अन्नकूट का महोत्सव बनाया गया, अन्नकूट जतिपुरा में स्थान है, अन्नकूट का स्थान है जहां पर नाना प्रकार के व्यंजन भोग लगाए गए थे गिरिराज जी को, और गिरिराज जी खाते जा रहे थे गिरिराज जी, ऐसा वर्णन है गोपाल चंपू में कि किस प्रकार भोग लगाते जा रहे थे और गिरिराज जी खाते जा रहे थे और आखिर में फिर उनको तुलसी दी गई, बहुत सारी तुलसी टोकरी में डाल के दी गई। इस प्रकार गिरिराज जी संतुष्ट हुए और बाद में फिर इंद्र बड़े क्रोधित हो गए और तृतीया के दिन यानी कि परसों के दिन जो है फिर इंद्र ने बरसात शुरू कर दी सामर्थक बादलों को बुलाकर, और कृष्ण फिर गिरिराज जी को धारण किया। बोले गिरिराज धारण की, गोवर्धन पूजा की। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज गोवर्धन पूजा होगी और शायद 10 बजे आप शुरू कर रहे हैं, अभिषेक शुरू करेंगे, तो आप सब रहिएगा और उसके बाद प्रसाद भी होगा। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।